ओम शांति। बाबा ने इस महायज्ञ को रचा और भिन्न भिन्न रत्नों को सींचा है जो दुनिया के अंदर जितने भी पद है, डॉक्टर कहे, इंजीनियर कहे, जितनी भी डिग्रीज है, ऐसी एक डिग्री का व्यक्ति नहीं है कि जो बाबा के यज्ञ में न हो। और आदि काल से ही बाबा ने ये विंग्स का फाउंडेशन नींव पक्की कर रखी थी, ऐसे आज महसूस होता है। तो हम सबके बीच में है हमारे मोहन सिंघल भाई जी, जो अपनी स्वराज अधिकारी की ऊंची स्थिति में रहते हैं। सदैव आप ज्ञान योग के मनन चिंतन में स्वयं को खोए हुए रखते हैं। आपने ममा और बाबा की ऐसी दिव्य पालना समीपता से ली हुई है और बाबा ने आपको, जैसे ही आप अपने 1968 में इंजीनियरिंग की पद पर आप कार्यरत थे और बाबा के सेवा में भी आप तत्पर रहे, वर्तमान समय आप एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड ट्रेनिंग एक्टिविटी, जो हमारा ज्ञान सरोवर है, वहां पर भी सेवाएं देते हैं। साइंटिस्ट इंजीनियरिंग विंग ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में आप कार्यरत हैं। विशेष रूप से पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंतर्गत सुकुशलता पूर्वक आप कार्य कर रहे हैं, इसीलिए आपको 1992 में पर्यावरण श्री के पुरस्कार से आसाम और गुजरात राज्य से पर्यावरण श्री इस आभूषण से आपको सुसज्जित किया है गवर्नमेंट के द्वारा। बिहार राज्य में अनेक सेवा केंद्र के स्थापना के आप निमित्त बने हैं, क्योंकि आप जानते हैं आजकल तो बाबा के सेंटर खोलना इतनी मेहनत की बात नहीं, परंतु उस समय बहुत मेहनत करनी होती थी और ऐसे समय पर आपने बिहार जैसे राज्य में सेंटर खोलने के निमित्त बने। अनेकानेक प्रदर्शनियां, उसमें भी विशेष इंडस्ट्रियल पीस प्रदर्शनी, बाल उत्थान प्रदर्शनी, युवा प्रदर्शनी और कहीं प्रदर्शनी का भी निर्माण करने में आपका योगदान रहा। अभी अभी हम सब जानते हैं कि पंढरपुर में बहुत सुंदर बाबा का म्यूजियम बना है, लेकिन कोई भी चीज अकेले तो नहीं होती। बाबा के बच्चे अपनी उदारता से कितने सेवा स्थान को बनाते हैं, तो आपकी थोड़ा हेल्थ भी ठीक न होते भी 3-4 बार आप पंढरपुर गए और वो जो म्यूजियम बन रहा था उसको डायरेक्शन देते हुए कैसा सुंदर सेवा का साधन बना है, तो शुभ भावना, शुभ कामना और अपनी उपस्थिति बेहद सेवा में आप सदैव लगाते हैं। इसीलिए बाबा के आप और दादियों के दिल तख्त पर विराजमान है। चांद से दिल भरता नहीं, यादों से दिल निकलती नहीं, ये कैसी चाहत है बाबा। मोहन भाई कहते, एक ऐसी चाहत है बाबा, आपके मिले बिना ये सेवा का सुकून हमें मिलता नहीं, ये सेवा का सुकून हमें मिलता नहीं। ऐसे माननीय तपस्वी मूर्त मोहन भाई जी का हम स्वागत करते हैं एक हाथ की ताली से। और मैं निवेदन करती हूँ कि आप दादी जी के अंग संग रहे, बाबा का भी अंतिम दिनों में आप यहीं थे, तो ऐसे आप दिव्य अनुभवों से हमें लाभान्वित कराएंगे। मोहन भाई।
ओम शांति। डॉक्टर सतीश भाई बहुत अच्छी अच्छी बातें कि कैसे हम अपनी आत्मा की ओरिजिनल स्थिति प्राप्त करें। जैसी हम आत्माएं परम धाम से रिमझिम रिमझिम करती हुई आई थीं, चमकीली आत्माएं, कैसे हम ओरिजिनल स्वरूप को प्राप्त करें वो हम सभी सुन रहे थे। और कोई भी चीज होती है उसको प्रैक्टिकल में जब लाया जाता है फिर क्या होता है, व्यक्ति फिर उसका स्वरूप बन जाता है। तो जैसा आदरणीय बहन जी अभी बता रहे थे, बाबा के साथ रहने का काफी समय मौका मिला और सबसे विशेष बात तो ये थी कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा 17-18 जनवरी को, तो अंतिम दो दिन भी संपूर्ण रीति से बाबा के साथ थे और बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का, अनुभव करने का मौका मिला। उसको भी आज आपके साथ कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि हम सभी का लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, बाप समान बनना। आज भी मुरली में बाबा ने क्या बोला, क्या शब्द यूज किया, हाँ कौन सा शब्द यूज किया आज बाबा ने, ब्रह्मचारी तो बने, अब क्या बन रहे हैं, ब्रह्माचारी। क्योंकि शिव बाबा तो निराकार है, उसको हम जितना बोल लें ज्ञान का सागर, शांति का, प्रेम का सागर है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो कुछ प्रदर्शित उससे कुछ होता नहीं। तो जिस रथ में वो आता था वास्तव में, उसके द्वारा एक एक गुण, एक एक शक्ति, एक एक जो व्यवहार में उसका जो प्रदर्शन होता था, वो ही सिद्ध करता था कि ये तन जो है ये परमपिता परमात्मा के ही लायक है और ईश्वर को इससे अच्छा और दूसरा तन नहीं मिल सकता था। तो खैर, ये तो सब बहुत लंबी बातें हैं, हम सब समय प्रति समय आदरणीय दादियों के मुख से यज्ञ का इतिहास किताब है उससे भी सुनते रहते हैं, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आंखों देखी जो कर्मातीत अवस्था हमने देखी, जो अनुभव की, उसमें हम कुछ थोड़ा सा जाना चाहते हैं, क्योंकि तभी लगेगा कि हाँ ये संभव है और तभी ये लगेगा कि हाँ ये कोई मुश्किल बात नहीं जो बाबा ने कहा है और वो हम सब सहज रीति से हासिल कर सकते हैं। तो बाबा से मिलने का या ज्ञान में आने का, तो 1961 एंड या 62 में ये सौभाग्य मिला, जब ग्रेजुएशन कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और तभी बाबा कानपुर आए थे। तो लखनऊ के पास ही कानपुर है, तो कानपुर में बाबा से मिलने का मौका मिला। तो बाबा के पास, हाँ, एक तो ये हम सबको जो जो हम सुनेंगे अनुभव ये करें कि मुझे भी वैसा उस समान बनना है और वो पर्टिकुलर गुण और शक्ति धारण करते चलें, तो कोई कारण नहीं कि हम बाप समान ब्रह्माचारी जो बाबा ने कहा है वो न बन सके। तो बाबा से जब पहली बार मिलने का मौका मिला तो बस बाबा ने पूछा क्या नाम है, तो हमने बताया हमारा लौकिक नाम श्री है, बोलते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, जो श्री गोपाल श्री बोलते हैं, तो फर्स्ट नेम ये था। तो बाबा ने कहा अच्छा श्री क्या नाम है फिर से, तो फिर थोड़ा तेजी से बोला। तो देखो बाबा इतने ह्यूमरस थे, हर एक को ये लगता था बाबा मेरा है। तो उस समय हम बहुत यंग थे, 16-17 साल के थे, तो बाबा ने कहा आओ आओ दादी दीदी आओ आओ, आज बाबा एक बच्चे से मिलाता है जो अभी से ही क्या है, श्री श्री किसको बोल सकते हैं है? किसके नाम के आगे श्री लगा सकते हैं है? देवी देवता अर्थात जिसकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। और अभी तो कोई नहीं है, फिर बाबा ने उसका रहस्य देखो, अभी ब्रह्मा बाबा भी अपने को श्री नहीं कहला सकता। तो आज से तुम्हें ये श्री जैसा बनना है, आत्मा को भी पवित्र, शरीर को भी पवित्र करना है तत्वों को, तो आज से बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है। तो बाबा ने नाम बदल दिया। तो इससे ये शिक्षा मिलती है, जो भी आता था, किसी का नाम मानो माया देवी होता था, बाबा कहता था माया का अब क्या काम, अब तो बाबा के बन गए। बाबा नाम कुछ गीता देवी या लक्ष्मी या जो बाबा को प्रेरणा और जो बाबा त्रिकालदर्शी पने के अनुभव से बोल देखता था वैसा बोल देता था। किसी का नाम मानो गरीब दास था, हाँ बाबा क्या बोल देता था, अब बच्चे भगवान इतना बड़ा मिला है, अब तुम गरीब न गरीब हो न दास हो, अब तो तुम अमीर चंद हो गए। तो बाबा ऐसे अमीर, मतलब भाव क्या है, हम जिसके भी संपर्क में आए उसको पुराना जीवन भुला दे। बाबा हमारा पुराना जीवन भुला देता था और उसी क्षण से ये स्मृति हो जाती है, हाँ मेरा नया जन्म। तो एक तो हम ये लक्ष्य रखें कि हम जिनके सेवा मुंह से तो करते हैं वो सब करें, लेकिन हमारे व्यवहार से, हमारी इंद्रियों से, एक एक जो बाबा ने कहा है प्रकृति के इन तत्वों से बना जो शरीर है, ऐसी सेवा हो उस व्यक्ति को भी लगे जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए कि हाँ इनसे मुझे एक नया प्राण मिला है और आज से मेरा नया जीवन शुरू। तो और बाबा जिसके साथ यंग थे, बच्चे होते हैं, बाबा बच्चों के साथ, बच्चे जैसा हमने देखा है, गांव से बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई थी उन दिनों, 17 जनवरी को हरियाणा से कुछ माताएं, जाट माताएं जैसे होते हैं ना, वो पहनते हैं और वैसे ही बिल्कुल। तो बस बाबा उनके साथ, अरे बच्ची देखो बाबा के बच्चे आए हैं, आओ बच्ची देखो, और बाबा उनके साथ इतना खुशी खुशी, जैसे एक दिन पहले भी जैसे ना वो ऐसा खुशी खुशी डांस कर रहा था, चल रहा था, लगता था जैसे बाबा उन माताओं को, और उनका तो बस नशा ही देखो क्या होता था, भगवान साकार में स्वयं उनके साथ जैसे कि खेल पाल कर रहा है। हर एक को बुजुर्गों के साथ गंभीरता से बाबा बिल्कुल बुजुर्ग होके, और कोई भी बात होती थी उसका चिंतन और समाधान करना। तो भाव ये है, हर एक को ये अनुभव होना चाहिए कि हाँ ये मेरे हैं। बाबा से जैसे अनुभव दादियों से होता है, तो इस तरीके से एक जीवन का लक्ष्य ये है कि ये जीवन में हम, और ये कब होगा, ये तब होगा जब हमारे अपने संस्कारों को हम अंदर ही मर्ज करते जाएं, जो इस जन्म के संस्कार है। ऊपर से अगर जब ये होता है हाँ ये वो आत्मा, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसको देखते ही बस वही पुरानी बात याद आ जाएगी, कोई बदला लेने की भावना, कोई अपमान, उसने अपमान पहले किया है किसी ने तो उसका अपमान करने की, कोई शब्द निकल आए, कोई हमारा व्यवहार, बिल्कुल नहीं ऐसा बाबा को लगे, हर एक को ये लगे ये हमारे अपने। और बाबा से प्रैक्टिकल लगता था, एक तो ये बात। दूसरी बात, बाबा से जब मिलते थे तो बाबा बहुत समय देता था कि आओ, अब दो दिन पहले भी बाबा ने बोला ना, हाँ विकर्म भस्म करने का क्या तरीके, कितने तरीके बताए थे बाबा ने, कल परसों की मुरली में था, हाँ कितने तरीके थे, बड़ा सहज बताया, मुरली की हेडलाइन में ही था दो तीन, कि विकर्म अगर भस्म करने हैं, इस जन्म के विकर्म कैसे भस्म होंगे और पिछले जन्मों के कैसे होंगे, मुरली की हेडलाइन में ही था, कैसे होंगे, इस जन्म के जो विकर्म हैं वो भी अगर, क्योंकि ज्यादातर वो विकर्म परेशान करते, क्योंकि वो स्मृति में है, दो जन्म पहले, चार जन्म पहले क्या विकर्म किया मालूम ही नहीं है, तो परेशान भी नहीं करते, और वो कहीं सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में चले गए जैसा बताया जा रहा था। लेकिन इस जन्म में जो विकर्म किए हैं वो बार बार स्मृति में, चेतन मन में, अवचेतन मन में, हर रीति से आएंगे और फिर जब ज्ञान मिला है कई बार पश्चाताप होता है, कई बार ऐसी उन बातों में अगर समय व्यर्थ संकल्प और समय रूपी खजाना वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए वो जो है बाबा ने बताया उसका तरीका हेडलाइन में, इस जन्म के जो विकर्म हैं उन जन्मों को उन विकर्मों को लिख करके बस बाबा को अर्पण कर दो तो आधे तो माफ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो समझो इतना 25, 30, 40, 50, 60 जितनी उम्र है और अज्ञान काल में जितने हुए वो अगर माफ हो गया तो एकदम कितना हल्कापन। हेडलाइन ही मुरली की थी, हल्कापन महसूस करना। हल्के की तो आवश्यकता है, जब हल्का होंगे तभी तो फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता कितना हल्का होता है। तो एक तो इस जन्म के जो भी हैं, जो स्मृति में है, 4-5 साल के बाद बाबा ने कहा अगर ऐसे हमें याद है, बाबा कहते थे तो हम लोगों ने लिख करके एक कॉपी नोटबुक में बाबा को दिया, यही है झोपड़ी में ही इधर है। बाबा ने कहा देखा रे बच्चे इतना ज्यादा लिखा है, बस इतना बताओ इस जन्म में कोई विकार विकारी तो नहीं बने? नहीं, बस बस बाकी तो ये छोटी मोटी, क्योंकि 16-17 साल में ज्ञान में आ गए, फलाना ये खा लिया, ये वो हो गया, अन्न दोष हो गया या ये हो गया, तो ये तो बाबा ने कहे सब तो पैसे के है, कोई बात नहीं, पवित्रता का खंडन नहीं तो बस ये। तो उस रीति से बाबा एकदम हल्का और बस दिया बाबा को, हाँ बाबा ने पलटा देख लिया और बस ये, और उसी वक्त से ही एकदम ऐसा अनुभव होने लगता है। तो अभी आप क्या करेंगे, साकार में नहीं भी है तो भले जो स्मृति में आते हैं लिख करके, भले अपना नाम ना लिखें, कई बार ये आता है नाम लिखेंगे तो कैसे वो पता चलेगा, अननेसेसरली प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई बात नहीं नाम भी ना लिखो, बाबा ये हमारे इस जन्म के वो हैं, बस अभी तो हम बिल्कुल हल्के हो रहे हैं, बाबा आपके सम्मुख रख रहे हैं, माफ हो जाएंगे, बस करके बाबा के कमरे में भी वो रखा है एक बॉक्स, उसमें लिखा है, और यहाँ भी बाबा के पत्रों का एक भंडारी है, एक पत्रों का, तो बस डाल दो और बस ये महसूस करो कि हाँ इस जन्म के तो मेरे भस्म हो गए। वो पिछले जो 63 जन्मों के जो और हैं उन सबसे ज्यादा परेशान करने वाले वो, क्योंकि वो तो अचेतन मन और उसमें सब कॉन्शियस और वो तो हो रहे हैं, और उसके लिए बाबा ने क्या विधि बताई है कि जितना याद करेंगे वो होते जाएंगे, अपने आप हल्के होते जाते हैं, तो इसका मतलब हम बैक जाते जाते वो हल्के कर रहे हैं। एक ये बाबा ने जो बताया ना, तो साकार बाबा का हर कार्य ये होता था बच्चे संपूर्ण बन जाए, बस बच्चे बच्चों में कोई कमी ना रहे, रहम दृष्टि। तो वो ही हमारी अपने सब देवी भाई बहनों के प्रति होनी चाहिए, यही मेरे जन्म जन्मांतर के सतयुग के आदि से लेकर अभी तक के साथी हैं, बस अलग अलग नाम रूप होगा, थोड़ा संबंध अलग अलग होंगे, बाकी उन्हीं के अंदर ही जैसे हम घूमते रहते हैं। ये उसने भी विज्ञान ने भी, मैं फर्स्ट टाइम जब अमेरिका गया था वहां पर 2002 में, उस समय वहां के एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की लिखी हुई किताब थी मेडिकल कॉलेज के, तो वो हमारे वहां पर भांजी है उसने दी थी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। उसमें एक बहन की जीवन कहानी थी, उसमें वो 27-28 साल की बहन थी, लेकिन पानी से भी बहुत डरती थी, अपने जो कुछ संबंधी क्लोज संबंधी घर में ही रहने वाले उनसे भी उसे बहुत भय लगता था, डर लगता था आदि आदि कई ऐसी बातें थी। तो डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, ठीक नहीं हुई, फिर एक जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिन्होंने ये किताब लिखी उन्होंने उसे कहा हिप्नोटिज्म का प्रयोग करके उसे पिछले जन्मों में ले गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की उसकी अपनी लिखी हुई है, तो उसको एक जन्म में और फिर दो जन्म ऐसे लगभग 18-19 जन्म तक का उसने अपना उस किताब में वृतांत है। तो उसमें जब पहले जन्म में गई तो देखा, उसने बता रही है बस वो हिप्नोटिज्म में कि मैं स्विमिंग पूल के पास खड़ी हूँ 10-11 साल के बच्चे अपनी सखियों के साथ खेल रही हूँ और ये, और किसी ने मुझे जस्ट धक्का दे दिया पानी में और मैं गिर गई और मेरा डेथ हो गई। तो इस जन्म में वो संस्कार पानी से भय का लेकर आई और इतना भय लगता था उसे कि थोड़ा भी पानी कहीं देखती थी तो भय। और उसमें फिर किसी जन्म में उसे डॉक्टर ने भेजा, वो भेजते थे और उसे भेज भेज के कि हाँ अब और पीछे जाओ देखो क्या है। एक जन्म का उसने बताया कि मैं यहाँ पर ना जब ये हमारे कोई संबंधी का बताया कि ये संबंधी वगैरह है बस, और कुछ जन्म पहले उसने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था और वो अभद्र व्यवहार वगैरह के कारण उसे उससे इतना भय होता था और इस जन्म में वो ही उसका क्लोज संबंधी चाचा या कोई बना था और वो उसे मालूम नहीं था लेकिन वो किताब में लिखा था हाँ मैं ये देख रही हूँ और हिप्नोटिज्म में तो वो सब चीजें दिखती हैं और वो पूरा वर्णन करती है, टेप होती है, डॉक्टर उसे लिखते हैं क्योंकि मेडिकल डॉक्टर ने वो पूरी की पूरी लिखी हुई थी। और उसके बाद इसीलिए इस जन्म में जो वो संबंधी बना संस्कार उसका वो ही उसके द्वारा उसे एकदम वही पूर्व जन्म के घटनाएं या कुछ आ जाते और वो बहुत भय खाती है आदि आदि कई जन्मों का। उसने एक जन्म का उसने कहा कि मैं, और सबसे बड़ी बात ये जो बाबा भी कहते हैं कि भाई जो इस जन्म में भाई हैं मतलब अधिकतर जन्मों में भाई बनेंगे, जो बहने वो अधिकतर जन्मों में बहन, लेकिन कुछ जन्मों में क्योंकि आत्मा में दोनों संस्कार होते हैं तो भाई जो बहने भी होंगे, बहने जो हैं वो भाई का भी जन्म लेंगे, लेकिन अधिकतर जन्मों में चूंकि वो ही संस्कार हैं तो वो ही अधिकतर 84 में से हो सकता है 75-80 जन्म वो ही चलते हैं जिस जन्म में हमारा ये शरीर है। कई बार बाबा ने मुरलियों में भी बताया है, संख्या नहीं बताई है, नंबर नहीं, अधिकतर मैक्सिमम जन्म हमारे उस शरीर में। तो एक जन्म में वो बता रही कि मैं भाई हूँ, वारियर हूँ और कहीं पर रोम में वहां पैदा हुई, वहां लड़ रहे हूँ और लड़ते एक ने मेरे पीछे खंजर वो मार दिया, मैंने शरीर छोड़ दिया और इस कारण से अभी भी वो मतलब अलग अलग नाम रूप में हम नहीं जानते लेकिन ऑटोमेटिकली उनसे हमारा व्यवहार ऐसा होगा बिल्कुल जैसे कि वो, और जिनसे बहुत मित्रता होगी, संबंध प्यार होगा, यहाँ पर भी उस जन्म का हमारे अंदर बहुत प्यार होगा। उस किताब से एक एक करके उसमें वो लिखा हुआ है, प्रोफेसर वीज की वो किताब है विदेश के, तो इस रीति से उसमें काफी जन्मों का, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन बाबा जो जो ज्ञान बताते हैं तो प्रोफेसर उसे डॉक्टर जो है वो देता था कि कमांड कि अब तुम ये करो ये, तो तुम बताओ कि जब तुम एक शरीर छोड़ती हो और दूसरा शरीर आता है तो क्या होता है इन बिटवीन बीच में। तो उसने बताया एक जन्म में मैं भाई ऐसे 70-80 साल की लेडी हूँ और डॉक्टर और मेरे बच्चे पोते पोतियां सब वो कर रहे हैं और मैं जैसे शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, डॉक्टर भी कोशिश कर रहे हैं आदि आदि बचाने की, और जैसे एक बार बस मुझे लगा और मैं एकदम हल्की हो गई और बस मैं आत्मा देख रही हूँ, मेरा शरीर पड़ा हुआ है और मैं जैसे ऊपर से देख रही हूँ क्या क्या हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं आदि आदि वो सब बता के फिर क्या डॉक्टर कमांड दे रहा है कि बस मैं एकदम हल्की होके एक ऐसे लोक में गई तो वहां पर सारे लोग ऐसे हैं वो सब सफेद कपड़े और फरिश्ते, आवाज कुछ भी नहीं है लेकिन पता चलता है कि क्या बोल रहे हैं, लिप मूवमेंट बिल्कुल सूक्ष्म वतन की बात, अभी भी संदेशियां जाती है ना, ध्वनि से रहित दुनिया है लेकिन लिप मूवमेंट उससे पता चलता है कि क्या संदेश, तो वो हो रहा है सारा और मैं देख रही हूँ बड़ी शांति का शक्ति का, सब श्वेत वस्त्रधारी जैसे वहां लग रहे हैं, घूम रहे हैं जैसे, और वो उनके पास जाते ही बड़ी शांति का शक्ति का एहसास आदि आदि। फिर जब वो नीचे आई तो फिर डॉक्टर ने बताया अगली बार जब तुम जाओ तो उनसे पूछना कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तो अगली बार फिर हिप्नोटिज्म में जब डॉक्टर ने भेजा तो वहां पर उसने बताया, पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग ये सूक्ष्म वतन नहीं बोला हम लोगों को, मतलब ना उसने उन्हें नाम दिया कि भाई हम लोग फरिश्ते जैसे हैं, यहाँ पर हैं यहाँ पर और जो भी आत्माएं आती हैं यहाँ से जाती है और हम लोग यहाँ पर रहते हैं, ये आवाज की दुनिया नहीं है, ये दुनिया जो है बिल्कुल साइलेंस वर्ड है, लेकिन लिप मूवमेंट से ये पता चलता है। तो उसने उनको नाम दिया मास्टर्स, इसने किताब में भी नाम पढ़ा मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ऐसा करके उसने बोला। और फिर आप लोग क्या करते हैं कि जब आते हैं यहाँ आत्माएं वगैरह, और उनसे पूछा उसने कि अधिक डॉक्टर ने कमांड दिया था कि आप पूछना कितने जन्म हो सकते हैं, तो उस किताब में लिखा हुआ है मैक्सिमम अधिक से अधिक किसी के 86 जन्म हो सकते, किताब में हो सकता है कुछ वो, और वैसे भी अगर हम देखें तो 86 का ही लिए कि जो शुरू शुरू में ज्ञान में आ गए, बाबा तो कहता है ये अंतिम जन्म है 84वां, और संगम युग इतना लंबा जो चल रहा है इसके अंदर किसी के दो जन्म हो गए तो 86 वैसे भी। तो इन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उस किताब में सारा वैज्ञानिक आधार पर, और फिर बाद में शुरू में उसने डॉक्टर ने किताब में लिखा हुआ है कि मेरा भाई ये एक स्पेशल अनुभव है जो मेडिकल साइंस के भी विपरीत जाता है, तो मैं मेडिकल जो काउंसिल है उसको ये कहता हूं कि भाई अगर आप मुझे नौकरी से निकालना चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेरे जीवन की वास्तविकता है जिसे हिप्नोटिज्म के द्वारा इतने जन्मों का, और ये मैंने वो करा है। तो उसने अपने को ऑफर किया लेकिन मेडिकल काउंसिल ने निकाला नहीं, और उस समय भी वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, उसने हमें ऐसा किताब वो दिया था। भाव क्या है कहने का कि बाबा के ज्ञान की बातें पूरा विज्ञान भी वो ही सिद्ध कर रहा है। अब बाबा ने कहा था जितना जितना ये सिद्ध होता जाएगा निकटता आती जाएगी। तो बाबा की बात जो हम बता रहे थे ये तो उस रेफरेंस में आई। बाबा से जब हम मिला करते थे जो जीवन कहानी देते थे तो बस बाबा देखते थे और बस दृष्टि वगैरह दी, लगता था जैसे बस बाप बस। अभी भी जब आप डालेंगे और इतने हल्के बाबा, अब मैं बिल्कुल हल्की हो गई आत्मा और बस, तो एक जन्म के माफ और उसको स्मृति में रखते हुए जैसे अनेक जन्मों के भी हमारे विकर्म हल्के होते रहेंगे। और आत्मा को बनना तो पावन है ये, क्योंकि परम धाम में पुराने संस्कारों के साथ तो जा नहीं सकती आत्मा। परम धाम तो एकदम पवित्र धाम है, वहां जाना ही है संपूर्ण पवित्र होके। अब ये दूसरी बात है, हम पवित्र कैसे आत्मा को करें। योग रोग या भोग, ये तीन विधि हैं जो बाबा ने बताई, या फिर चौथी वो तो हम बच्चों के लिए नहीं है कि धर्म राजपुरी की सजाए आदि आदि। लेकिन इसीलिए कभी अगर रोग भी होता है, कई बार होता है अरे दादियां इतनी महान तपस्विनी उनको ये रोग आया ऐसे ऐसे हो रहा है, उसी के द्वारा उनके बचे हुए जो थोड़े बहुत हैं वो भस्म हो रहे हैं जिससे कि वो परम पवित्र होके परम धाम में जा सके। तो योग उन्होंने बहुत लगाया उससे हो गया, कुछ रोग कुछ ये शारीरिक भोगनाएं, कहीं संबंधों की भोगनाएं, कहीं कोई ना कोई कटुता, उन सब के द्वारा। लेकिन बाबा का अल्टीमेट लक्ष्य है इनको पवित्र बना के मुझे ले जाना है, जिससे मेरे बच्चे धर्म राजपुरी की या कोई गर्भ जेल की सजा है वो उसमें ना आए। अब बाकी द्वापर के बाद से तो जो जन्म होगा, लेकिन गर्भ महल की का अनुभूति जो बाबा ने अब बताई है कराई है, तो अब कोई भी ऐसा ना हो गर्भ जेल की बात। तो इस जन्म में कभी भी जितना भी शरीर से त्रासदी आ जाए, संबंधों में आ जाए, कोई परीक्षाएं आ जाए, ये कभी ना हो कि ये शरीर मेरा छूटे बाबा नया नहीं, इसके द्वारा फिर गर्भ मेल में जेल में जाके इतनी सजाएं भोगनी पड़ेंगी बहुत ज्यादा। तो इसीलिए बाबा ने कहा है इसमें रोग होता है यो कुछ भी हो वो मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, उससे मैं हल्के। इसीलिए बाबा का मम्मा का यही देखने में आता था। क्या आता था देखने में? बस कुछ भी स्थिति होती थी कि बस अरे हम हल्के होते जा रहे हैं, बिल्कुल ये हो रहा है। और हम लोगों ने सुना है जैसे कि डॉक्टर भी आता था तो पूछता था कौन है पेशेंट, अगर जब बाबा हॉस्पिटल में होते थे, क्योंकि बाबा का मामा का चेहरा ऐसा खिला रहता था उसे भी पता नहीं चलता था। तो ऐसी बात तो बाबा का भाव क्या है कहने का, जो ये बाबा ने व्यवहार में करके दिखाया, मम्मा ने, दादियों ने, दादियों के साथ हम नीचे, हमें कई बार मौका मिला क्योंकि होते थे तो कॉटेज में जाते थे रोज रात शाम को दादी का, जैसे उसे दादी की गीता पाठशाला कहते थे हम लोग, मिलते थे कुछ सीनियर भाई बहने जाते थे, तो दादी जी को कई बार डॉक्टर बोलता था, डॉक्टर आपको तो, दादी आपको तो बहुत दर्द हो रहा होगा, तकलीफ हो रही होगी, इसमें तो बड़ी तक, तो दादी कहती है नहीं मुझे तो कोई अनुभव नहीं हो रहा है ऐसे दर्द का, तो क्यों, क्योंकि देह से न्यारा होने का और देह में आने का अभ्यास, ये बाबा का भी बहुत परफेक्ट था, और जब चाहे हम देह में आए और जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। और वो पता कैसे चलता था, जब पार्टी लेके कोई बहन आती थी ब्रह्मा कुमारी पहले, तो पार्टी लेकर के आई, देखा बाबा ने मानो झोपड़ी में मिलने का टाइम दिया है या हिस्ट्री हॉल में या अपने कमरे में, तीन जगह बाबा मिला करते थे, दो तीन लोग दो चार होते थे तो अपने कमरे में ही मिलते थे, तब तो कमरा भी बहुत छोटा था, जितने तक पलंग पड़ा है उतने तक ही कमरा था, ये तो बाद में एक्सटेंड किया है, बहुत छोटा बाबा का कमरा था, बाबा का पलंग, बाबा की जो गद्दी रखी है उस पर बाबा बैठा करते थे, और बीच में एक छोटी कुर्सी मेज जिस पर कई बार बाबा खाना खाते थे, बस इतना सा ही वो था। तो वहां पर ना ब्रह्मा टीचर बहन जाती थी और देखती थी बस बाबा आंख खुली हुई है, बस अपने में मस्त है, तो वो कहती थी टाइम हो गया होता था पार्टी से मिलने का, तो जाके खड़ी भी हो जाती थी, कई बार बाबा को आभास ही नहीं होता था, कई बार ये होता था वो कह बाबा, तो बाबा को जैसे एक जर्क सा लगता था, हैं बच्ची अच्छा आ गए पार्टी लाए, हाँ बाबा पार्टी लाए हैं, हाँ हाँ ले आओ बच्चों बैठा के, तो उस समय जैसे बाबा देह में आते थे, यानी कोई आत्मा चली नहीं जाती लेकिन इतने तक देहवान भूल करके बाबा कभी भ्रमण, कभी जो बाबा कहते हैं सेवा के लिए, मंथन के लिए, कभी परमधाम, कभी सूक्ष्म, बहुत जगह बाबा ने बताई हैं, वो बाबा का प्रैक्टिकल अभ्यास था, आए थोड़ा सा जरक सा लगा और उसके बाद बाबा बात करी बच्चों से, टोली खिलाई, और बाबा की विधि भी यही होती थी बहुत अच्छी, खड़े होकर भी या बैठ के भी, आओ बच्चे आओ मीठे बच्चे, ऐसे बाबा जब बस हाथ फैला देते थे और फिर उसके बाद बाबा की भाव में एक एक करके सब आते थे। और सबसे ब्यूटी ये होती थी कि बाबा के जैसे ही स्पर्श होता था हमें भी एकदम देहभान से न्यारा होने का अनुभव होता था, बाबा की दृष्टि पड़ी फिर बाबा थोड़ा ऐसे थपथपाते, हाँ बच्चे आओ आओ, ऐसे जैसे आत्मा को फिर से शरीर में, कोई आत्मा जाती नहीं लेकिन इतना न्यारी हो जाती थी, अभी तो देखो अभ्यास करें तो भी मेहनत लगती है, और उस समय तो बस बाबा का इतनी तो अपनी स्टेज इतनी पावरफुल हो कि हम दूसरे की स्टेज को भी बदल सके, ये अनुभव हर एक को, एक दो को नहीं, जो मिलते फिर बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे और सब करके कोई बात होती थी, फिर एक जाता था, दूसरा आता था, तीसरा आता था, तो इस तरीके से मिला करते थे। तो अभी भले उसके बाद लास्ट में दो एक साल में तो डॉक्टर ने मना करा था कि इन्फेक्शन वगैरह न लगे, तो बाबा दूर से ही ज्यादातर दृष्टि देते थे और वो आत्मा जो भी दृष्टि लेती थी ऐसा ही अनुभव करती थी। तो वो ही काम ब्रह्माचारी बनना माने ब्रह्मा के कदम पर, या ब्रह्मा बाबा ने जो जो बच्चों को अनुभव कराए वो ही अनुभव दूसरों को हमारे द्वारा होना चाहिए, हम करा सके, बस जिसको दृष्टि दे देह का भान भूलता जाए, देह के भान में अगर हम कई बार ले आते हैं वो नहीं देह भान से न्यारी वो आत्मा होती जाए, ऐसा अनुभव हो, तो ये है ब्रह्माचारी बनने का एक और कदम। और क्या, तो पहले बाबा सब सुना करते थे, देखा तो देह में आने का, देह से न्यारा होने का, और जो अभी बता भी रहे थे ये मन जीते जगत जीत का प्रैक्टिकल में उसका उदाहरण क्या, तो पहले तो जब बाबा को हम मिला करते थे बाबा हमारी बातें सुनते थे, सुनने के बाद कोई बात होती थी समाधान करते थे, फिर जब लगभग 66-67 में 66-67 में मिला करते थे तो बाबा से दो तीन लाइन ही बोली, बाबा कहते थे हाँ बच्चे बाबा समझ गया, थोड़े में ही बाबा पूरी बात समझ जाता था, समाधान दे देता था। लेकिन 17 और 18 जनवरी 1969 को हमें क्या अनुभव हुआ कि हम बाबा के सम्मुख गए, 17 जनवरी की सुबह ही आ गए थे, बस बाबा से मिले, बाबा ने दृष्टि दी और बस दृष्टि देते ही बाबा ने कहा अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, हमने एक अक्षर भी नहीं बोला, ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरा लगभग 6-7 बार उन दो दिनों में, क्योंकि और पार्टियां थी नहीं, बाबा से मिले तो बस जरा सा बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि देते ही मन की गहराइयों तक पहुंच गए। मन में जो संकल्प चल रहा है, क्यों ये कौन कर सकता है, जिसने खुद जो इच्छा मात्र अविद्या हो गया होगा वो दूसरे की इच्छा को जान सकता है। हमारा भी अभ्यास ये हो कि मैं बस इच्छा मात्र अविद्या होते जाऊं जो बाबा ने दिया, इसीलिए बाबा संतुष्टता के ऊपर इतना बल देता है। जो है वो मतलब कोई चीज के अभाव हमें खटकता ना रहे, बार बार वो जीवन में याद आए, स्वप्न में, संकल्प में, हमारी बातचीत में निकल जाए वो इच्छा। यही बाबा ने कई बार क्या, इच्छा क्या नहीं बनने देती, अच्छा नहीं बनने देती। इच्छा मात्रम अविद्या जितने होंगे उतना मन जीते जगत जीत होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन के अंदर इच्छा पैदा होती है और मन जित हमारे मन में इच्छा नहीं होगी तो हम दूसरे की इच्छा को तुरंत पढ़ लेंगे, दूसरे के संकल्प को तुरंत पढ़ लेंगे और तब उनकी इच्छाओं को हम पूर्ण कर सकेंगे, तभी तो हम उनके इष्ट देव बनेंगे। इस चैतन्य जन्म में अगर हम इष्ट देव अपने भक्त और प्रजा के नहीं बने तो हमारे जड़ चित्रों से वो हम कैसे अनुभव करेंगे कि ये हमारे इष्ट देव है। द्वापर युग से भक्ति मार्ग में जब वो लाइन लगाएंगे हमारी मूर्ति के आगे मंदिरों में, तो जब हमारी मूर्तियां उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर देती हैं, हम तो यहाँ चैतन्य में हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हमें चैतन्य में हम उनकी इच्छाओं को नहीं पूर्ण कर सके तो क्या किया। इस कारण से ऐसा वो हो कि बस किसी की इच्छा को जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है, खुद उस समय टेम्परेरी भी बिल्कुल इच्छा मात्र अविद्या हो जाए, उन आत्मा की आंखों में जाके तुरंत उसका इच्छा का, और तब उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकेंगे। यही 18 जनवरी को यहीं पर हिस्ट्री हॉल में क्लास हो रही थी और सारा दिन तो ये अनुभव किया ही, दो दिन में 6-7 बार, कई बार कई सेवा का, कभी भाई अपने पुरुषार्थ के लिए, कभी वहां की जो एक्सपेंशन है उसके लिए, कई बातों के लिए बाबा के पास जाते थे और बाबा बता देते थे बिना एक शब्द सुने। ये है मन जीते जगत जीत का लक्षण, प्रैक्टिकल में देखा। और 18 जनवरी को क्लास हिस्ट्री हॉल में बाबा करा रहे थे, हम भी सामने बैठे हुए थे, दादी जी भी बैठे थे और 15-20 लोग जो मधुबन के होते थे, 20-25 वही लोग थे। बस क्लास कराते कराते हमारे मन में सुनते सुनते एक संकल्प आया कि बस बाबा जो है ना कुछ और हमारे पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए बोले, सिर्फ संकल्प ही आया। और जैसे ही संकल्प, वो आत्मा तो कर्मातीत अवस्था को पहुंच चुकी थी, 18 जनवरी की रात्रि क्लास चल रही थी, तो जैसे ही मन में संकल्प आया तुरंत बाबा ने बस नाम लेकर के बस कई 5-6 महावाक्य उच्चार दिए जो हमारे जीवन के लिए आज तक भी गाइडलाइन है। तो ये मतलब भाव सिद्ध करता है कि हम भी जब अपनी कर्मातीत अवस्था के जितना निकट पहुंचते रहेंगे ना, पहुंचेंगे तो कभी, लेकिन उसके निकट जाते जा रहे हैं वो भी तो अनुभव होना चाहिए ना हमें। तो वो तब होगा जब बिल्कुल हमारी अपनी ऐसी अवस्था होती जाएगी संकल्प रहित, यानी कि इच्छा मात्रम अविद्या की वो, और बाबा ने तुरंत वो महावाक्य उच्चार दिए। तो देखो एक ये अनुभव हुआ। और कर्मातीत अवस्था का 4th-5th जो मैं बता रहा हूं उसमें कि कई बार बाबा को खांसी आती थी, आपने सुना होगा। और तो क्या होता था कि खांसी आज के कई बार ऐसा लगता था कि बाबा को बड़ी कष्ट हो रहा है, लेकिन दूसरे ही क्षण बाबा के पास ही ट्रांसलाइट का एक चित्र रखा है, अभी भी रखा हुआ है वहां नीचे हिस्ट्री हॉल में, कृष्ण का, श्री कृष्ण का और लक्ष्मी नारायण का। तो बस बाबा कहते, अरे बच्चे देखो ये पुराना शरीर है, अभी पुराने तत्वों का बना हुआ, कितनी तकलीफ हो जाती है, खांसी आती है, मुरली चलाने में भी बाबा को कितना तकलीफ, लेकिन बस कल बाबा जाके देखो बच्चे ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा और नया शरीर, सब कोई खांसी नहीं होगी, कैसी दुनिया होगी। और ये कहते कहते ही बाबा का स्वरूप पूरा बदल जाता था और बस देखो बच्चे ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। और तो ये शो करता है कि हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली हो कि कोई परिस्थिति आए, चाहे शरीर की परिस्थिति आए, चाहे बाहर की परिस्थिति हो, कोई भी हो, उसको हम बदल सके। स्वस्थिति परिस्थिति के ऊपर भारी पड़े। अभी तो क्या होता है, परिस्थिति जो है ना वो हमारी स्वस्थिति पर भारी पड़ जाती है, कई बार हमारे अंदर की स्थिति हलचल में आ जाती है। बैठे बैठे किसी का फोन आया, टेलीग्राम, आपका ये प्रिय मित्र संबंधी इसका एक्सीडेंट हो गया या डेथ हो गई या ये हो गया, बस हमारे अंदर बहुत प्रश्नों की बौछार चल जाए, क्या हुआ, कैसे, अब क्या होगा, आदि आदि, हमारी स्वस्थिति एकदम उस परिस्थिति ने बदल दी। लेकिन होना इसका रिवर्स चाहिए। और जो बाबा से प्रत्यक्ष बड़ी से बड़ी घटना हो जाती थी हमारे सामने की बातें, एक बार हुआ कलकत्ता में पंडाल वगैरह लगा था, प्रदर्शनी, आग लग गई, कई बार बाबा ने बोला है, आए वहां से समाचार वगैरह, अच्छा बच्चे ऐसा हुआ, और वो जो हमारे तीन वकील प्रसिद्ध हुआ करते थे कानपुर के, संतराम जी, त्रिलोक चंद जी और मोती चंद जी, वो प्रसिद्ध वकील होते थे, उन्होंने कहा बाबा हमें उन पर केस करना चाहिए, हमारे पास सब प्रूफ है, कैमरे में फोटो वगैरह है, उन आर्य समाजियों ने ये आग लगाई है ऐसा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, वो बेचारे, उन्हें मालूम थोड़ी है कि किस काम में, बाप कभी बच्चों के ऊपर ऐसा केस नहीं कर सकता, बच्चे तो बेचारे अज्ञानी हैं, कोई बात नहीं, आगे से सावधानी रखो, कभी पंडाल में प्रदर्शनी करो तो इंश्योरेंस करो, आदि आदि। लेकिन बाबा की इतना बड़ा उस समय तो यही बहुत बड़े, हमारी पूरी प्रदर्शनी जल गई, पंडाल जल गया, लेकिन बाबा की स्थिति में जरा भी हलचल। तो ये है अपना स्वस्थिति के द्वारा। और जो हरेक को हो रहा था नहीं बाबा हमें ये करना चाहिए, ये बिल्कुल उनकी अवस्था को भी बाबा ने एकदम शांत कर दिया स्वस्थिति से, पूरे उस मीटिंग का वातावरण ही पूरा का पूरा बदल गया। तो एक ये है स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति पर विजय, परिस्थिति हमारी हलचल को डगमग न करे। और क्या इसमें देखा, तो अंतिम दिन जब बाबा बिल्कुल कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच गया, तो जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे तो क्या होगा, जो बाबा ने कहा सतयुग में क्या होता है, जब बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, बस ये शरीर छोड़ के, ये वस्त्र उतार के अब नया शरीर लेंगे, कोई अफसोस नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, ये पोते का बेटे का क्या होगा, इनका क्या, कुछ भी नहीं, खुशी खुशी जैसे कि शरीर छोड़ करके बस अब हम जा रहे हैं। और ऐसा अनुभव हो जाता है कि बस अब हम जा रहे हैं, और जितना ये अनुभव होता है उतना उतना निसंकल्प होकर आत्मा शरीर छोड़ देती है। यहाँ बाबा का अंतिम दिन यही देखा हमने, 18 जनवरी की सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई थी, तो उस दिन तो क्योंकि थोड़ा ठंडी के दिन थे, बाबा को थोड़ा उस दिन खांसी का भी था, क्योंकि ये भी छुट्टी ले रही थी आधे कल्प के लिए, तो जो कोई भी चीज अगर विदाई लेती है ना आधे कल्प के लिए तो क्या होता है, अगर कोई कोई चीज अगर विदाई, बाबा ने कहा दीवा बुझता है तो दीवा बुझने से पहले क्या होता है, तेजी से टिमटिमाता। अभी भी बीमारी या कोई चीज हमसे अगर विदाई लेती है तेजी से आएगी, समझना चाहिए बाबा बहुत बहुत थैंक्स। कोई बीमारी, कोई परिस्थिति, कहीं कटुता हो, कुछ बहुत विकराल रूप है, बाबा बहुत थैंक्स, इसका मतलब यह है अब ये हमसे पूरा छुट्टी लेने के लिए आ रहा है, दीवा बुझने से पहले बड़ी तेजी से टिमटिमा रहा है, इसीलिए समस्या विकराल हो रही है, कोई रोग आ रहा है, कोई भोगना हो रही है, कोई ये सब, तो उसको हम इस रीति से इंटरप्रेट करें, कोई भोगना के वशीभूत ना हो जाए, बल्कि ऐसा हमें अनुभव हो कि बस ये जा रहा है। तो 18 जनवरी को ना बाबा, हमेशा नीचे क्लास होती है रात्रि क्लास, रात को 8:45 बजे, उस दिन बाबा ने 7 बजे ही जमुना प्रसाद भाई को बुला के बोला आज बाबा अभी क्लास कराएगा, सबको इन्फॉर्म कर दो। तो पहले घंटा रखा रहता था, इन्फॉर्मेशन दे दी, सब भोजन वगैरह करके आ गए और बाबा की क्लास जल्दी, नॉर्मल से 1.5-2 घंटा पहले। ये इस बात का प्रतीक है कि जब हम भी कर्मातीत बन के शरीर छोड़ेंगे, हमें भी आभास हो जाएगा अब मेरा समय आ गया है, और समेटने का जो भी बचा हुआ, बाकी तो बाबा ने सब समेट लिया था, क्लास करा के जाना वो बाकी था। तो बाबा ने पहले क्लास, उस दिन अगर नॉर्मल वे में क्लास करने का अगर होता तब तो बाबा क्लास ही नहीं करा पाते। और बाबा के पूरे रिकॉर्ड में कभी भी ऐसा नहीं है, हमने सुना कि हॉस्पिटल में भी थे, ऑपरेशन में भी, तो भी बाबा मुरली लिख करके देता था और तब बहने मामा या दूसरे वो पढ़ा करते थे। एक भी दिन इतने 33 साल में कभी बाबा की क्लास मिस, उस दिन मिस का रिकॉर्ड हो जाता, क्योंकि सुबह तो बाबा ने आके योग ही कराया था, क्लास नहीं कराई। तो फिर बाबा आए 18 जनवरी की रात्रि को, रात्रि क्लास उस दिन, बस कैसी क्लास, बिल्कुल। तो बात हो रही थी 18 जनवरी की, तो बाबा ना उस दिन, चूंकि जनवरी का महीना था, ठंडी थी, तो बाबा वो रजाई जैसे ओढ़ करके, और ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी की मदर, उस समय उन्होंने वो बना करके भेजा था पूरा, ये तो ऐसे ये सिर पे टोपा सा लंबा सा वो था, और वो पूरा बाबा जैसे पहन के ऐसा लग रहा था बिल्कुल बाल कृष्ण का सा रूप बाबा का एकदम, बस पहन के ठंडी में वो बाबा आए। और वो लाने का सौभाग्य हमें ही मिला था, क्योंकि हम आसाम में पोस्टेड थे, आसाम से दिल्ली मतलब प्लेन से आए थे, और वहां से तो पहले यही होता था कि कोई चीज अगर भेजनी है तो अपना समाचार जरूर दे दो जिससे मधुबन भेजी जा सके। तो समाचार दिया था, तो उन्होंने भेजा था, तो बाबा बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था बिल्कुल जैसे, क्योंकि संस्कार तो वो पूरे एमर्ज हो ही चुके थे बाल कृष्ण के, इस जन्म के और बाकी 83 जन्म के तो संस्कार खत्म हो गए थे, एकदम पूरी आत्मा पावन बन गई थी। तो बाबा क्लास में आए, और क्लास में आके बस बाबा ने मुरली चलाई। उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई, जबकि ऐसा बिल्कुल खांसी भी अपनी चरम सीमा पर थी सुबह के वक्त, लेकिन सारा जैसे, और जब कर्मातीत अवस्था होती है तो कर्म भोग जितने शरीर के होते हैं उनके ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। तो धीरे धीरे वो चुपतू करते करते योग बल ने विजय प्राप्त पूरा कर लिया, और उस दिन 18 जनवरी की आप मुरली सुनो, अभी भी वो सीडी यहाँ ओम शांति भवन के नीचे जो रूम है, वीडियो ऑडियो वीडियो रूम, वहां मिलती है 18 जनवरी की। तो एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, एक बार भी कुछ गला साफ करने का जरूरत नहीं पड़ा, जो इस बात का प्रतीक है कि कर्मातीत अवस्था जब होगी ना, उस समय जब हमारा शरीर छूटेगा तो उस समय हम बिल्कुल ऐसे होकर के जाएं, क्योंकि अगर शरीर में कोई व्याधि हुई, वो व्याधि खींच रही है, कोई भी संबंध खींच रहा है, तो वो तो अंतमते सोगते हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। तो अंतमते सोगति का जो गायन है वो इसीलिए ही है, ये पूरा पुरुषार्थ हमारा उसी के लिए हो रहा है कि जिस समय हमारा देह से आत्मा निकले अंतमते, उस समय ये हमारी स्थिति हो जो ब्रह्मा बाबा की देखी। तो पूरा इतना सब होते हुए भी पूरा बाबा जैसे मुरली चलाई, एक बार भी बाबा को शरीर का कोई व्याधि का अनुभव नहीं, ना खांसी आई ना ये, और बाबा ने बार बार सबको दृष्टि दी, मुरली चला के बाबा खड़े हुए, ये हिस्ट्री हॉल। फिर दृष्टि देने लगे एक एक को, फिर बाबा एक कदम चले फिर रुक गए, फिर घूम करके फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे। उस दिन बाबा को ये हो कि आज मैं निराकार शिव बाबा को भी कि साकार तन के द्वारा पूरे दृष्टि दे दूं, जिससे कि, क्योंकि ये तो अंतिम मिलन है, उस समय ऐसा अनुभव हो रहा था। और ये तो ये इस रीति से फिर बाबा एक कदम गए फिर खड़े हो गए, और ऐसा निष्कल भाव से बस जैसे बाप बच्चों को वात्सल्य रीति से बस बाबा एक एक को दृष्टि दे रहा है। और बार बार बाबा की दृष्टि दादी की तरफ आके रुक जाती थी, दादी को ज्यादा दृष्टि, क्योंकि बाबा को मालूम था बस अब तो ये खेल का अंतिम सीन है, बाद में तो इसे ही संभालना है। प्रैक्टिकल में हमने ये दृश्य देखा और हम देखते ही रह गए, बाबा को यहां से दरवाजे तक जाने में ही 5-7 मिनट लग गए। हर बार बस बाबा रुके और फिर जैसे ही, तो कर्मातीत अवस्था तो ये हम सबको भी हासिल करनी है। हर दृश्य से हम ये शिक्षा ले कि जितना भी हो अपने को ये चेक करते चले। इसीलिए बाबा कहता है अब समेटते चलो, क्योंकि अंत समय नहीं तो जहां पर भी थोड़ी भी अगर आसक्ति होगी, लगाव झुकाव या गिरना या कुछ भी होगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा, वो अंत मते सोगति नहीं होने देगा। तो इस तरह फिर बाबा अंत में बाहर गए और बस सबको दृष्टि देते, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। ये शब्द भी रिकॉर्डेड है, कभी भी बाबा ने इतने 33 साल में विदाई लेता है, छुट्टी लेता है, ये शब्द बाबा ने कभी नहीं बोले। बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, बस ये इसका मतलब। बाबा को पूरा आभास था, हाँ ये मेरा अंतिम मिलन है, अब मैं जा रहा हूँ छोड़ के। तो बच्चों को मुरली भी चलाई, पालना भी दी और सबसे छुट्टी विदाई ले करके बाबा जैसे अपने कमरे में गए। और अपने कमरे में जाके बस हम सब ने सुना है, दादी जी के हाथ में हाथ और फिर बाबा ने देह त्याग किया। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद और देखा, कि आश्चर्य देखा कि बाबा ने 18 जनवरी की रात्रि को शरीर छोड़ा, पूरा 18 जनवरी की रात को भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद 2 बजे करीब तब संस्कार बाबा का किया गया, क्योंकि सब तरफ से टेलीग्राम टेलीफोन आ रहे थे, आप रखो हम पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं। और तब तो इतने फास्ट मींस भी पूरे नहीं थे, तो हाँ हाँ दादी सबको बोलती थी बाबा आपका है, सबका बाबा है, जब तक आप पहुंच नहीं जाएंगे तब तक नहीं करेंगे। तो सब आते रहे और 21 को बाबा का शरीर का संस्कार किया गया। हमें यहाँ पर थे बहुत कम, तब तक तो और पहुंच गए थे। बाबा को स्नान वगैरह कराया और शांति स्तंभ में बाबा का वहां पर संस्कार किया। लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता था, कोई शरीर जब आत्मा चली जाती है तो शरीर अकड़ जाता है, जैसे स्टिफ हो जाता है, ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। लेकिन बाबा ने तत्वों को भी इतना पावन बना दिया था योग बल के द्वारा कि बस उन तत्वों ने भी अंत तक पूरा बाबा का साथ दिया और बाबा का वैसे ही चमकता शरीर, कोई दुर्गंध नहीं, कोई ऐसा थोड़ी बहुत तो वो आई, लेकिन स्नान भी कराया और सब कुछ पूरा बिल्कुल बाबा का शरीर काफी हद तक फ्लेक्सिबल। यह है 5 तत्वों के ऊपर विजय का प्रतीक बाबा। बाबा हम बच्चों से भी यही चाहता है, इसीलिए बाबा कहता है हम जब भी रोज भी योग करें लेकिन 5 तत्वों को हम जरूर ये दान दें, उन तत्वों को हम अपना सहयोगी बना लें। क्योंकि भारत में तो अधिकतर बाबा ने कहा ज्यादातर मृत्यु और जो विनाश होना है वो 5 तत्वों के द्वारा होना है, एटम बम वगैरह का द्वारा यहाँ ज्यादा नहीं होना है, या तो गृह युद्ध के द्वारा हिंदू मुस्लिम उनके द्वारा, या 5 तत्व बैठे हैं एकदम अर्थक्वेक आया ये छत गिरी, अब इमेजिन करो छत गिरी, इतने बड़े बड़े बीम गिरे, गर्डर गिरे, ये कोई गिरा, कहीं फ्रैक्चर, कहीं खून बह रहा है, ऐसे समय में अंत मते सो गति अगर हो गई वो तो दुर्गति हो जाएगी। चीख चिल्लाओ और सब कुछ हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, करा रहे होंगे लोग। तो इसीलिए बाबा कहता है अगर तत्वों को हमने योगदान किया होगा तो ये तत्व ही हमारे सहयोगी बनेंगे और ऑटोमेटिकली हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, जहां पर कुछ नहीं है। बहुत घटनाएं हम जानते हैं, यहां तो समय का अभाव है, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे पांव उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। और उसमें क्या होगा, क्या करना है हमें, ये जो तत्व है ना, कई बार हमने बताया इन तत्वों के साथ हम अपने संस्कारों को मिलाते चले। कैसे मिलाएंगे? हाँ, मानो कोई है जल तत्व तो है, अब बंबई वगैरह से जो आघास आते हैं, बाबा ने कई बार बोला समुद्र इतनी उछाल खाएगा ऐसा सुनामी जैसा एक उसमें समा लेगा। इमेजिन करो अंत समय अगर आ रहा है, ऐसा समुद्र आया, पानी आया, यहाँ 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 बढ़ता जा रहा है, अगर हमारा वॉइसलेस कनेक्शन बाबा से होगा ऑटोमेटिकली उधर की तरफ हमारे पांव में सोचने का भी ज्यादा नहीं होगा, ऑटोमेटिकली उधर पड़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। लातूर का, कच्छभुज का, भोपाल का, कई जगह की हमारे पास यज्ञ में पूरा आता है, बहुत घटनाएं हैं, कभी समय हुआ तो बताएंगे कैसे हमारे बाबा कहते हैं मैं बंधा हुआ हूं अपने बच्चों की रक्षा के लिए, बस प्रोवाइडेड वो वायरलेस कनेक्शन होता है ये सब खत्म हो जाएगा, मोबाइल का कनेक्शन खत्म, ये सब कनेक्शन, और वॉइसलेस कनेक्शन, हमारा ऐसा कनेक्शन हो वॉइसलेस, जरा भी विकार का अंश मात्र भी, बाबा ने कहा ना पवित्रता अपवित्रता रिंचक मात्र भी ना हो, कुछ दिन पहले मुरली में आया था ना, तो इसलिए बाबा यही हमारा तन और मन, ये बिल्कुल हम इतना पवित्र रखें तो कोई भी बाबा बंधा हुआ है हमारी रक्षा करने के लिए, और वो ही अंत मते सोगते। तो ये तत्व कैसे मदद करेंगे? मानो जल है, हा? अब जल के साथ हम अपने संस्कारों को मैच कर लें। जल में कौन सा होता है सबसे बड़ा गुण? शीतलता, ऐसा, और उसका एडजस्टमेंट। देखो अभी गिलास में लिया है, जल गिलास में एडजस्ट हो गया, कटोरी में लोगे कटोरी में एडजस्ट हो जाएगा, चम्मच में लोगे चम्मच में, थाली में लोगे थाली में फैल जाएगा। ऐसे हमारे संस्कार भी इतना एडजस्टेबल हो, हमें ये ना कहना पड़े भाई इनके साथ एडजस्ट होना बड़ा मुश्किल है, इनके साथ सहज है, हर एक के साथ हम एडजस्ट होके चल सके। जल का अगर ये गुण धारण किया होगा तो क्या होगा? एडजस्टमेंट होता है जल का सबसे बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, तो जल आगे बढ़ता रहता है। जल के सामने बहुत बड़ी रॉक भी पत्थर आ जाएगी तो भी जल रुकेगा नहीं, इधर से यूं घूमता घामता आगे बढ़ता जाएगा, रुकेगा नहीं। ऐसी एडजस्टेबल अगर हमारी नेचर होगी ना, तो क्या है कोई परीक्षा हो, कोई संबंधों में कटुता हो, कोई शरीर की व्याधि हो, कुछ भी हो, वो हमारी प्रगति को रोक नहीं सकती। जहां ही जल रुक जाता है तो क्या होता है? हाँ, दुर्गंध आने लगती है, बदबू, मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर मेरे मन में अभी भी कहीं घृणा, ईर्ष्या, द्वेष है, बदले की भावना है, किसी को देख के प्रति क्रोध है, अहंकार है, कहीं लोभ मोह है, तो समझना चाहिए मेरी प्रगति उतनी नहीं है, कहीं रुकी हुई है, इसीलिए ये जो दुर्गुण है रूपी मक्खी मच्छर ये पैदा हो। तो अपना संस्कार इतना फ्लेक्सिबल हो, एडजस्टेबल हो हम सदा। वैसे हरेक में हरेक तत्व के बहुत बहुत गुण है, यहां मैं सिर्फ एक बताऊंगा, तो जल का एक ही गुण वैसे बहुत है, फ्रेश कर देता है जल, शीतलता है, प्यास को शांत करता है, हरेक का बहुत बड़ा बड़ा रहस्य है, लेकिन एक एक गुण। इसी तरह पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है? सहनशीलता। उससे भी बड़ा गुण है पृथ्वी का, पृथ्वी दाता है, देती है। बस देखो एक बीज वो पेड़ आ जाएगा, हजारों बीज रिटर्न में दे देती है। पृथ्वी से ही पानी तेल सब मिलता है, फल फूल अनाज सब चीज पृथ्वी देती है, दाता है पृथ्वी। ऐसे ही अगर पृथ्वी का हमने दातापन का गुण धारण किया होगा, हमारे सम्मुख कोई भी आए, वो व्यक्ति जो है ना, कोई सम्मुख आता है लेकिन खाली हाथ ना जाए, हमसे कुछ ना कुछ लेकर के जाए। क्या लेकर के? कोई स्थूल चीज की बात नहीं है, उसकी तो लिमिटेशन है, लेकिन प्रेम सद्भावना, हमारे आदर सत्कार की भावना, हर एक को हम व्यवहार से अपने वो घायल कर दें तो क्या होगा? ये दातापन का गुण है, हर आत्मा को हम ये देते चलेंगे तो क्या होगा? कभी भी पृथ्वी जो है हमारे मृत्यु का या हमारे कष्ट का कारण नहीं बन, जितने भी अर्थ को एकाएंगे कुछ भी हो, लेकिन पृथ्वी हमें बुद्धि को बाबा ऐसा वो करेगा, उधर ही पांव बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। तो पानी का गुण देख लिया, पृथ्वी का ऐसे वायु का कौन सा गुण होता है? वायु हर चीज को उठाती है हल्का, पृथ्वी हर चीज को खींचती है, वायु हल्का उनके ऊपर उठाती है। तो ऐसे ही बाबा में भी क्या गुण था, सदा इतनी परिस्थितियां, कई बार इतने वो आते थे, मुरली में बाबा बोल देते थे फलानी जगह के बच्चे वो कर रहे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते या कोई भी, लेकिन बाबा सदा हल्के रहते थे। जब भी देखो, ये नहीं कि उसी का चिंतन और ये वो, ऐसे ये हल्केपन का गुण अगर हमने धारण किया होगा तो चाहे जितने साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे समुद्र के किनारे, तो और भी ज्यादा ये आते हैं, लेकिन वो हमारे कष्ट का, व्याधि का, मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वायु की तरह हमने हल्का रहना सीख लिया, और उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ये इसी तरह और आकाश का कौन सा बड़ा गुण होता है? आकाश विशाल तो होता है, विशालता है, लेकिन आकाश के ही उस गुण के कारण आकाश में सैटेलाइट छोड़े हुए हैं वैज्ञानिकों ने सारी दुनिया के, तो इसीलिए मोबाइल, इसीलिए टीवी, टेलीफोन, सारा कम्युनिकेशन आकाश के कारण है। आकाश में सैटेलाइट, वहां किरण वेव्स जाती हैं, रिटर्न होके आती हैं, एक सेकंड में कहीं का दृश्य कहीं देख लेते हैं, कहीं की बात कहीं बोलते हैं, सुनते हैं, वो हो जाता है। ऐसी आकाश की तरह अगर हमारा हृदय इतना विशाल होगा तो क्या होगा, उसका प्रतीक क्या है, हमारा किसी के प्रति कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन कभी नहीं होगा। होता क्या है, जिनसे हमारे संबंध मिलते हैं, अच्छे हैं, संस्कार मिलते हैं, उनसे हम देर तक बात करना चाहते हैं, हमें दिल की बात एक्सचेंज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और जिनके साथ संबंधों में कहीं थोड़ी बहुत कटुता है, अगर सामने से भी कोई आ रहा है तो नजर बचा के निकल जाएंगे, बात नहीं करेंगे, कई बात ऐसी होती है दृष्टि नहीं देंगे। तो बाबा ये चाहता है आकाश की तरह विशाल बनो, और वो कब होगा, जब हमारे अंदर दूसरे की कमी को भूलने की क्षमता होगी, कमी और कमजोरी को भूलने की, क्षमा करने की। जितनी भी महान आत्माएं हैं ना, उनमें सबसे बड़े से बड़ा गुण कौन सा था, क्षमा करने का। बाबा में भी देखा, मामा में, दादी में, कोई भी बात हो जाती थी, इतना बड़ा परिवार था, कई बार बस दादी दिल में ही नहीं रखती थी, बस आज अभी ये बात हुई और थोड़ी देर बाद ही, हाँ भाई फलाना भाई आओ बुलाओ, एक सेकंड भी दिल में, हमारे मन में तो दिनों तक महीनों तक चलती रहती। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है इस बात को, है मतलब जिंदगी जीना इस तरह आसान कर लिया। कैसे आसान हो जाता है जिंदगी जीने, जिंदगी का जीना इस तरह आसान कर लिया, किसी को माफी दे दी, किसी से माफी मांग, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, ऐसा कुछ है मतलब, है ना। तो देखो मतलब ये दिल के अंदर अगर किसी के प्रति वो बात नहीं रखी तो भूलने की शक्ति, ये बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा में देखी, दादियों में देखी, बहुत भूलने की ऐसी शक्ति, कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए वो। और अंतिम कौन सा वो है, तत्व अग्नि। अग्नि का स्वरूप क्या है, सूर्य है प्रकृति, प्रकृति में सूर्य है। तो सूर्य को की तरह हम ना, अगर अग्नि का गुण यही होता है कि उसमें कोई चीज डाल दो उसका रूप परिवर्तन हो जाता, इसीलिए बाबा कहते हैं ज्वालामुखी बनो। ज्वालामुखी से क्या होगा, ज्वालामुखी माने ये अग्नि का प्रतीक ही है, और ज्वाला होगी तो क्या होगा, कोई भी आत्मा आए, जो बाबा ने कहा है रोती हुई आत्मा आए, आपके सम्मुख आए, आपका स्वरूप देख के रूप परिवर्तन हो जाए, हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती चली जाए, दुखी आत्मा आए, सुख की अनुभूति करती हुई वो चली जाए। कब होगा ये, कब स्वरूप बाबा का, तो ये देखते थे, कई बार जाते थे बाबा से, ये पूछेंगे ये पूछेंगे, बाबा के सम्मुख गए सब बात भूल जाती थी, क्या पूछने आए हैं याद ही नहीं होता था। बाबा पूछते भी थे कई बार, बच्चे कुछ पूछना है, नहीं बाबा अभी याद नहीं है, पहले बहुत कुछ सोच के जाते थे ये पूछेंगे ये, स्वरूप बदल जाए। तो वो तब होगा जब जितने हम शांत स्वरूप होंगे, ज्वालामुखी स्वरूप होगा, अग्नि जितनी तीव्र होगी, तभी तो दूसरे के स्वरूप को हम बदल सकेंगे। बस यही आवश्यकता है। हमारे सामने बहुत भक्त आत्माएं आएंगी। बाबा का भी यही हुआ। देखो बाबा से शुरू में यज्ञ में सबने पढ़ा है ना, बस बाबा के साथ खेलते थे, बाबा के दृष्टि ली, ध्यान में चले गए। किसका साक्षात्कार होता था बाबा से? कृष्ण का, नारायण का, सौरक का, सतयुग, सब खेल पाल करते थे। लेकिन ये भी घटना सुनी है सबने कि एक सरदार जी आते थे, बड़ा दुश्मनी थी उनकी, उनका परिवार आता था, सरदार जी ज्ञान में नहीं आते थे। तो एक बार सरदार जी ने निर्णय किया भी मैं बाबा को छुरी से मार दूंगा। वो छुरी लेके गया, बस बहन से कहा मुझे बाबा से मिलना है। बहन ले गई, बाबा के पास बैठा दिया, बहन भी चली गई और जब देखा सरदार जी ने अकेले हैं, उसने छुरी निकाली और बाबा के ऊपर वार करने ही जा रहा था, उसे क्या साक्षात्कार हुआ? गुरु नानक देव जी का। अगर उसे कृष्ण का या नारायण का साक्षात्कार होता, वो तो उसकी तो भावना ही नहीं थी उनके प्रति। तो करण करावन हार शिव बाबा है, वो हमारे द्वारा हमारे भक्त को, जिनके हम इष्ट देव बनने वाले, हमारे द्वारा वो ही साक्षात्कार कराएगा जिसमें हमारे भक्तों की भावना होगी। गुरु नानक देव जी का साक्षात्कार हुआ, बस वो तो वायरा रह गया, एकदम आंखों से आंसू निकलने लगे। अरे गुरु जी, मैं कितना बड़ा पाप करने वाला था, आपको मारने वाला था, मैं बड़ा पापी हूँ और आप मुझे माफ कर दो। रोने लगा, छुरा निकाल के बाबा के पैरों में रख दिया। बार बार बस उसे तो वही गुरु नानक देव जी दिख रहे थे और वो करते, फिर माफी मांग के रोता हुआ वो चला गया। भाव क्या है कि हम, हमारे द्वारा शिव बाबा, क्योंकि कोई आत्मा आएगी, मानो दुर्गा की भक्त है कोई, अम्बा की, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, छह आत्माएं आई, छह अलग अलग इष्ट देवी देवताओं के भक्त हैं, तो हम एक ही हैं, लेकिन हमारे द्वारा उनके बाबा उनकी वो इच्छा पूर्ण कराएगा, उसको वो ही साक्षात्कार कराएगा जिसके वो भक्त है। तभी तो उसको अपनी इच्छा की संपूर्णता की महसूसता होगी, तभी तो वो कहेगी जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है भगवान, हे प्रभु आपकी लीला न्यारी है। लेकिन ये कब होगा? जब हमने अपना तन और मन, ये दोनों को पवित्र रखा होगा। इसके अंदर किसी भी प्रकार की अपवित्रता रिंचक मात्र भी न रहे, बाबा अब हम बच्चों से ये चाहता है। और यही बाबा का अंतिम समय तक रहा। तो देखो हम इसी तरह रोज योगदान भी तत्वों को करते रहे। इन शरीर के साथ तो हमारा सबसे निकट का संबंध है, इसीलिए इस शरीर को हमें पूरा पावन, तो क्या होगा, ये तत्व भी हमें अंत तक साथ देंगे और पुरुषार्थ आत्मा को तो पावन कर ही रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
धन्यवाद मोहन भाई जी, बाबा ने आपको श्री के बजाय यहाँ ही मोहन बना दिया और सभी बहुत भावीभूर होकर बाबा की बातें सुनने में मग्न थे, परंतु समय अपनी सीमा दिखाता है। तो हम सबको बहुत आनंद भी आया और ऐसे महसूस हो रहा था कि हम भी वही दिन और वही स्थान पर हम बाबा जैसे सामने हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा